Ayo. Con beno. आज भी मेरे पास काफी तार आ गए हैं ये जगबटेसी के बारे में। मैंने कल ही तो कह दिया था कि अगर सब के सब तार का जवाब देने की मैं कोशिश करूं तो मैं असमर्थ हो जाऊंगा, ये मेरे से बन ही नहीं सकता है। या ये कहो कि तार तो हर एक किस्म के आते हैं और कोई ऐसे आते हैं कि जिसको अखबारों में दें तो शायद अच्छा हो, लेकिन मैंने तो ये भी सोचा कि अखबार क्या देना था, बहुत सी बातें लिखते हैं और कोई बाहर से बड़े सज्जन लेते हैं, काफी उसमें मुसलमानों की भी है, तो मैंने निश्चय किया कि वो सब मैं प्रकट नहीं करूंगा, उसमें कुछ फायदा न जनता को होगा, मुझको तो फायदा हो ही नहीं सकता है, न जो तार भेजने वाले हैं उनको कोई फायदा पहुंच सकता है। ऐसा वक्त रहता है कि जब ऐसी चीजें प्रकट करने से जनता कुछ पा सकती है, लेकिन आज मैं ये समझता हूँ कि उसमें से जनता नहीं पा सकती है, और जो ऐसे पड़े हैं कि पा सकते हैं ऐसे तो उसमें से क्या पाएंगे, वो तो उन्होंने पाया है, वो समझ गए हैं कि यही हमारा धर्म है, तो पीछे तो वो तो तुलसीदास के भक्त बन गई कि अहिंसा परम धर्म है, सिवाय सत्य के दूसरा कुछ है ही नहीं, दो ही चीज है, वो दो चीज करे तो पीछे। आज जो हम एक हमारी दृष्टि में चीज आती है वो तो बन नहीं सकती है, पीछे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई भी है, उससे मुझको कोई वास्ता नहीं पड़ा है। दुष्टता वो तो किसी भी मनुष्य में है तो वो दुष्टता ही है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा। अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारे मुल्क में काफी जगह पे आज सत्याग्रह चलता है, ऐसा कहते हैं, तो मुझको बड़ा शक है किस जगह पे वो कहते हैं सत्याग्रह चलता है, वहां सचमुच वो सत्याग्रह है कि दुराग्रह है। ऐसा हमारे मुल्क में हो गया है कि एक चीज का नाम ले लो लेकिन काम तो इससे उल्टा ही है, और आज जो कोई भी आदमी पीछे भले पोस्ट ऑफिस के हो, टेलीग्राफ ऑफिस के हो, रेलवे के हो, या तो देशी राज्यों में हो, जिस जगह पे वो सट्टा लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको इतना समझ लेना चाहिए कि हम ये काम जो कर रहे हैं वो सत्य है या असत्य है। अगर असत्य है तो उसका आग्रह क्या करना था, अगर सत्य है तो सत्य का आग्रह तो हमेशा हर हालत में करना ही चाहिए। तो क्योंकि आज मुल्क में इतना जहर फैल रहा है, उस मौके पर दूसरे आदमी हैं वो भी कहें कि चलो आज हम भी कुछ कर लें और पीछे हमको कुछ मिल जाए। ऐसा जो करते हैं कि हमको कुछ मिल जाए उस कारण करते हैं सत्याग्रह, वो सत्याग्रह नहीं हो सकता है, वो असत्य का आग्रह होगा। सत्याग्रह के लिए तो बहुत सी चीज़ें मैंने बता दी है, दो चीज़ तो अनिवार्य बताई है कि वो जो चीज के बारे में आग्रह रखा जाता है वो सचमुच सत्य है, और पीछे वो आग्रह रखने में अहिंसा का ही उपयोग हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं। तो आज जो हो रहा है वो उस चीज में तो मैं नहीं जा सकता हूँ, इतना आज अखबारों को पढ़ने का मेरे पास समय नहीं है, इच्छा भी नहीं है, कि चलो दुनिया में बहुत सी चीजें हो रही है, उसमें मैं क्या दखल देने वाला था, लेकिन तो भी आँख कुछ ना कुछ तो देख लेती है। इतने खत मेरे पास आ जाते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, अभी मुझको क्या पूछना था कि ठीक है कि नहीं, लेकिन एक आदमी पर श्रद्धा जम गई है और इतने वर्षों से ये काम करता आया है और कुछ नया सा काम माना गया उसके लिए, तो पीछे उसको पूछने की इच्छा हो जाती है, तो लिखते हैं कि हम करते हैं वो ठीक है कि नहीं। कोई कहते हैं कि हमने शुरू कर दिया है उसमें आशीर्वाद दे लो, तो मैं तो कह रहा हूँ आजकल कि जो शुभ काम है वो शुभ काम में ही आशीर्वाद पड़ा है, उसमें पीछे मैं हूँ या तो कोई भी आदमी हूँ उसके आशीर्वाद निरर्थक है, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। अगर काम अशुभ है तो उसमें जो आशीर्वाद रहते हैं वो साफ का काम करता है, तो इसलिए मैं तो कह देता हूँ। ऐसा आदमी अजीब मौका आ गया, मैंने कहा कि मेरे पास आशीर्वाद क्या मांगते हैं, आपका काम शुभ है तो उसके साथ आशीर्वाद पड़ा ही है, तो आप चले जाइए, निश्चय करो कि ये काम शुभ है कि नहीं। अगर वो अशुभ है तो पीछे आशीर्वाद वो आपके लिए बहुत बुरी चीज़ होने वाली है। इसलिए तो सज्जन थे तो मेरी बात समझ गए और समझ कर पीछे गए कि नहीं ये ठीक कहते हैं, और ये भी तो है कोई बड़ा व्यक्ति है, उनके तरफ से आ गए थे कि भेजो। मैंने कहा कि वो ऐसे बड़े हैं उनको आशीर्वाद की क्या जरूरत रह सकती है मेरी जैसा का, लेकिन उनका काम भी बड़ा है, जैसे वो बड़े हैं तो उसमें आशीर्वाद भरा ही है, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं रहती है। तो मुझको लगा कि जितने लोग आज सत्याग्रह चला रहे हैं वो समझ बूझ कर करें, अगर वो असत्य है उसमें कुछ भी जबरदस्ती की जाती है तो उसको छोड़े, छोड़ने से उनको अच्छा होगा, उनका उनका काम में अच्छा होगा और उसमें उसका जय भरा है। आज अगर वो दुराग्रह है, असत्य है, चीज तो मांगते हैं वो हक भी उनको नहीं है, और पीछे वो मांगना शुरू कर देते हैं, और पीछे वो तो जिसका हक नहीं है उसको मांगने में वो कहें कि मैं तो अहिंसा को इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन वो जो मांगना वही हिंसा है, तो पीछे वो अहिंसा को क्या इस्तेमाल करेगा। लेकिन यहाँ तो जो आदमी एक असत्य चीज़ मांगता है और पीछे गुमान करें कि मैं अहिंसा से वो कर लूँगा, वो कर नहीं सकता है। तो एक तो मैं आपको वो चीज़ कहना चाहता था। दूसरी चीज़ वो भी एक बड़ी भारी चीज़ है तो ठीक है कि दिल्ली के लिए मैं तो आज कहूँ, लेकिन मैं तो जानकार आदमी हूँ, हर जगह पे ये चीज़ मैंने कह दी है, कोई आदमी नई बात सुनाना चाहता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो इतनी शिविर चल रही है, हिंदुओं की है, मुसलमानों की है, और वहाँ सफाई का काम कौन करे, तो कहा ये जाता है कि सफाई का काम के लिए झाड़ू वालों को रखो, भंगियों को रखो, तो भंगी होंगे वो पैखाना का काम करेंगे, झाड़ू वगैरह देना है वो दूसरे काम करेंगे, लेकिन वो सब करें। अगर ऐसा करें तो मैं आपको कहता हूँ कि वो हमारा काम दिल्ली में चल नहीं सकेगा। थोड़ी सा तो मैंने इशारा तो इस बारे में कर दिया था, लेकिन मैं वो ऐसी चीज़ है कि बार बार मैं कह सकता हूँ। तो हम जो कैंपों में ही पड़े हैं उनका एक धर्म हो जाता है कि हम वो शुरू कर दें ना, अपना आंगन है उसको साफ रखने का, अपने पैखाने हैं उसको साफ रखने का, तो वो चीज़ की सुवास अपने आप फैल जाएगी, और पीछे और सब सब कोई उसकी जो डांडी पीसने वाले हैं उसका असर वो जो छावनियों में पड़े हैं उन पर होगा। आप तो आखिर में कुछ कमाते तो हैं, तो पीछे पगी के मार्फत से, झाड़ू वाला के मार्फत से कुछ काम करवा लेते हैं। मैं ऐसे बना हूँ कि मैं समझता हूँ कि हमने हमारे धर्म पर एक बड़ा कलंक लग गया है, अस्पृश्यता रूपी, तो अस्पृश्यता को मिटाने के लिए हम खुद अस्पृश्य बन जाएं। अगर हम अस्पृश्य बने तो माने भंगे बने, झाड़ू निकालने का काम करें वो कोई खराब काम थोड़ा है, वो तो बहुत अच्छा काम है, स्वच्छता रखना वो तो धर्म है, तो वो तो धार्मिक काम हो जाता है। तो अगर हम सब अस्पृश्य बन जाएं तो हम दो काम कर लेते हैं कि एक तो अस्पृश्यता का जो कलंक है उसमें काफ़ी बाकी रहा है उसका नाश हम कर लेते हैं, और दूसरा दिल्ली को खूबसूरत बना सकते हैं, और जो कैंपों में पड़े हैं लोग, वो समझेंगे कि दिल्ली के लोग अपना काम ऐसा अपने आप करते हैं, तो पीछे हम कैसे यहाँ पड़े रहें और उम्मीद करें कि नहीं दिल्ली में हमको सफाई करने वाले भेजो। मैं आपको कहूँगा कि मेरे हाथ में अगर कैंपों को चलाने का रहे, यूँ तो मैं कैंप वालों को कह लेता हूँ, तो उनको तो मैं कहूँगा कि नहीं ये आपको साफ करना होगा, कुछ काम तो आप करेंगे, यहाँ पड़े रहेंगे और पीछे क्या वो कार्ड्स खेलेंगे, पत्ता या तो चौपट खेलेंगे, जुआर खेलेंगे, या तो सोते रहेंगे, खाना तो पूरा नहीं मिलता है, मान लिया नहीं मिलता है मैं जानता हूँ, तो पीछे हम क्यों काम करें? ऐसा करते हैं तो हम एडी बन जाएंगे, कोई 5-7 आदमी थोड़े हैं, हजारों की तादाद में पड़े हैं लोग, हजारों की तादाद में तो बस रास्ते में पड़े हैं, कब पहुँचेंगे अपने घर में वो भी तो पता नहीं है। ऐसे लोगों को ये तालीम दी जाए कि आप खाएं तो सही, खाना हम आपको दे देंगे, लेकिन वो खाना के लिए आप काम तो करें, तो कम से कम यहाँ से शुरू करें सफाई करने से, और पीछे वो कह दें कि हम तो दूसरा भी काम कर सकते हैं, हम सूप काट सकते हैं, बिन सकते हैं, बढ़ाई का काम कर सकते हैं, लोहार का काम कर सकते हैं, या तो हम काटिब का काम करते हैं, वो भी निकमी चीज नहीं है, जो चीज़ हम सिलाई का काम करते हैं, इतनी चीज़ें इस हिंदुस्तान में पड़ी है कि वो अगर लोग भले कल करोड़पति थे, आज तो करोड़ चले गए, ऐसा तो दुनिया में बहुत होता जाता है, तो वो करोड़ का लिए रोता रहेगा, ये कहेगा कि मैं तो करोड़पति हूँ, मैं क्यों कोई भी काम करूँ, तो पीछे हमारा काम बिगड़ जाता है, हम जो काम करना चाहते हैं वो काम बन नहीं सकता है। इसलिए मैं तो कहूँगा बड़ी अदब से लेकिन बड़ी दृढ़ता से कि जितने कैंप हमारे चलते हैं वो काम कैंप अगर देखो तो आदर्श चीज़ होनी चाहिए, उसमें सफाई इतनी, उसमें गंदगी तो बिल्कुल नहीं, लोग पड़े हैं सब हैं, उन्होंने अपना काम तो ढूंढ लिया है। मैं आपको कहता हूँ कि आज जो हमको तकलीफ पड़ी है वो तकलीफ काफ़ी रफा होने वाली है, और जब हम ऐसे काम करने वाले बन जाते हैं तो पीछे हमारा गुस्सा है वो गुस्सा कुछ शांत हो जाएगा, हमारे दिलों में वैर भाव पड़ा है वो भी शांत हो जाएगा। मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने बुरा काम किया है वो बुरा नहीं किया है ऐसा कहो, वो तो मैं तो कहता भी नहीं, वो तो भलाई तो उसमें है कि बुरा काम को बुरा समझना और तो भी उनका बदला देना है, उनका जो वैर लेना है वो भलाई से लेना, उसका नाम भलाई है। ऐसा नहीं कि कोई पागल बन जाए, मूर्ख रहे कि कहेगा उसमें क्या किया है उसने, और इसलिए वो भूल भी जाता है कुछ किया है तो पीछे उसमें बदला की बात छूट जाती है, वो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, वो उस भलाई की निशानी नहीं है, भलाई तो वो है कि वो देखा है तो भी वो कहता है कि नहीं मैं दुष्टता का बदला दुष्टता से नहीं लेकिन दुष्टता का बदला मैं साधुता से दूंगा, अगर वो करें तो पीछे हमारा मुल्क तो में खेम है। आज तो मेरे पास अंग्रेजों के तार आते हैं वो भी लिखते हैं, आज एक फ्रेंच महाशय आ गए, उन्होंने भी कहा, वो तो बेचारा ने 2 मिनट ली होगी, उन्होंने कहा कि मैं दूसरा कुछ करना ही नहीं चाहता हूँ, कहना ही नहीं चाहता हूँ, तो मैंने तो उनको एक मजाक की कि आप किसको बधाई देते हैं, किस काम के लिए बधाई देते हैं, मैंने क्या काम किया है कि जिस लिए आप बधाई देते हैं, पुराना जो हो गया है वो तो मिट गया, उसकी क्या है, आज मैं क्या कर रहा हूँ कि जिसके लिए बधाई देते हैं, तो समझ गया कि वो तो मैं तो समझता हूँ कि आपका दुख है वो, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जिंदा रहो और रहो पीछे मेहनत करो, तो हम तो देख रहे हैं विदेशी पड़े हैं तो भी कि उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा होगा, आजकल के तुमको पहचानते ऐसा नहीं है, हम तो फ्रांस में पड़े थे तब भी तुम्हारा नाम तो फ्रांस में मशहूर हो गया है, तुमने सल्तनत को के साथ लड़ाइयाँ की है, तुमने बहुत काम दूसरा तीसरा किया है, अस्पृश्यता का मेल निकालने का तुमने काम किया है, तो वो तो हुआ, उससे जाहिर तो हो गए, लेकिन अब भी तुमको चोट लगती है कि अभी तुम जिंदा होते हुए लोग क्यों इतनी चीज़ है वो भी नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं तो मुझको बुरा लगता है, लेकिन वो बुरा लगते हुए मैं तो ईश्वर से इतनी ही प्रार्थना करूँगा और तुमसे भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि तुम इस तरह से दुखी न हो। लेकिन वो भगवान करता है, कोई वक्त ऐसा ही करता है कि हमको जो ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है उसी में से कुछ ठीक पैदा कर लेता है, तो ऐसे मायूस क्यों बनोगे? और तुम्हारे लिए मायूसी वो कोई अच्छी चीज़ नहीं। ऐसी एक मीठी जबान में थोड़ी सी बात करके पीछे वो चला गया, तो मैं समझता हूँ, लेकिन आखिर में मैं तो इंसान हूँ और जब मैं समझूं कि अभी मियाँ क्या करने वाला था और क्या बस मैं इसका साक्षी ही बनाई रहूं और पीछे एक ऐसा मूर्ख बनूं कि अपना दिल को मैं धोखा दूं और फुसला दूं अपने को कि नहीं क्या बात है, पीछे आखिर में तो लोगों को सीधा रास्ता बताएंगे और सीधा काम करेंगे, ऐसा मैं तो बना नहीं हूँ, मुझको ऐसा कोई है भी नहीं कि आज मैं जिंदा हूँ तो कल तक मुझको जिंदा रहना ही है। इसलिए अगर मुझको ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहने की तमन्ना होनी चाहिए तो एक ही शर्त से हो सकती है कि हाँ मैं वो जो कुछ भी काम कर रहा हूँ वो लोगों को भाता है, लोगों को उसमें से शक नहीं पैदा होता है और समझते हैं कि अगर ये गांधी ये चीज़ को कराने का हमको कहता है तो उसमें हम ऊँचे जाने वाले हैं, हम कभी नीचे नहीं जाएंगे, उसमें से हम बुजुर्ग नहीं बनने वाले हैं लेकिन हम तो बहादुर बनने वाले हैं, हम झूठे नहीं बनने वाले हैं हम तो सच बनने वाले हैं, हम किसी को रंज नहीं पहुंचाएंगे लेकिन हम दुख की बर्दाश्त करके दूसरों को सुखी करने की कोशिश करेंगे। अगर ये किया तो पीछे हिंदुस्तान का तो भला होता ही है, तब आप जगत का भला कर सकते हैं। आज तो हिंदुस्तान की और लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान क्या करता है, और अभी तो हमारा सच्चा इम्तिहान का वक्त आ गया कि अच्छा उन लोगों को आज़ादी मिली तो भी क्या करेंगे। ऐसा रहते हुए मैं समझता हूँ कि मुझको वो इच्छा नहीं रखनी चाहिए, बाकी इच्छा न रखते हुए भी ईश्वर मुझको उठाना नहीं चाहता है तो दूसरी बात हो जाती है, लेकिन वही मैं हूँ ना कि एक वक्त तो कहता था, आप लोग कहते हैं कहते थे वो तो 7 अगस्त को 42 की साल में मैंने कहा था कि आप मानते हैं कि मैं वृद्ध हो गया हूँ तो भी 400 बरस में जाने वाला हूँ, वो गांधी 400 बरस में नहीं जाएगा, वो तो 125 बरस जिंदा रहना चाहता है और ईश्वर से मांगता है। क्यों मांगता है कि जो काम मुझको करना था वो सबका सब पूरा नहीं हुआ है, जो सेवा मुझको करनी थी वो सेवा में तो शेष रह गया है, तो वो पूरा करने के लिए मुझको इच्छा तो रखनी चाहिए, इच्छा की पूर्ति करनी वो भगवान के हाथों में, तो मैं तो भगवान के हाथ में हूँ जैसे आप भी हैं, तो भगवान से मैं तो मांगता हूँ कि तू मुझको 125 वर्ष तक जिंदा रहने दे जिससे दूसरा तीसरा काम लोगों के पास से कराना है उसमें मेरे में योग्यता है, मैं वो कैसे कराना चाहे वो भी जानता हूँ, इसलिए रहने दे। आज तो मैं वो योग्यता खो बैठा, मुझको पता नहीं है कि मैं किसको समझाऊँ कि ये काम करो इस तरह से, तो मैं समझता हूँ कि मेरा जो समय है शायद आ गया है, फिर गया तो इसलिए मैंने वो भाई आए थे उनको भी कह दिया, लो हो गया।